अध्याय 6 1894 से 95 का चीन जापान युद्ध पृष्ठ संख्या 70। 1894 से 95 का चीन जापान युद्ध पूर्वी एशिया के आधुनिक इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में प्रमुख तथा विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश एक छोटे से द्वीपीय पड़ोसी देश की सैन्य शक्ति से पराजित हुआ। सुदूर पूर्व में साम्राज्यवाद के संदर्भ में भी यह युद्ध महत्वपूर्ण है। जापान की विजय आकस्मिक ही नहीं थी, बल्कि संपूर्ण भी थी। जापान के इतिहास में इस युद्ध के पश्चात सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और अब सशस्त्र सेनाओं ने सरकारी निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। जापान की विदेश नीति में बल और विस्तार को बढ़ावा दिया जाने लगा तथा जापान पूर्वी एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इस युद्ध के पश्चात चीन की कमजोरियां जापान ही नहीं बल्कि सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने खुले रूप से उभर कर आई और उसका पूर्ण रूप से शोषण किया गया। इस युद्ध को दो देशों के बीच आकस्मिक संघर्ष ही नहीं कहा जा सकता, वास्तव में यह उस शीत युद्ध का परिणाम था जो कोरिया के प्रश्न को लेकर लंबे समय से चीन और जापान के बीच चल रहा था। इस युद्ध के कारणों को जापान के भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा इतिहास में ढूंढा जा सकता है। युद्ध का प्रथम कारण जापान का पृथकता के बंधन को तोड़कर आधुनिक विश्व की प्रतिद्वंद्विता में हिस्सा लेना था। आधुनिक पुनर्नवीकृत जापान ने हठी विदेश नीति पर अमल करना आरंभ कर दिया। इस तरह के व्यवहार से जापान विश्व को दिखाना चाहता था कि अब वह असमान संधियों को मानने वाला देश नहीं बल्कि एक सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना वाला देश था। चूंकि कूटनीति जापान को यह सब दिलाने में असमर्थ थी जिसकी वह अभिलाषा करने लगा था, इसलिए वह मजबूत तथा कठोर कदम उठाने लगा। इसमें साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण भी शामिल था। 1868 आधुनिक पुनर्नवीकृत जापान ने हठी विदेश नीति पर अमल करना आरंभ कर दिया। इस तरह के व्यवहार से जापान विश्व को दिखाना चाहता था कि अब वह असमान संधियों को मानने वाला देश नहीं बल्कि एक सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना वाला देश है। चूंकि कूटनीति जापान को वह सब दिलाने में असमर्थ थी जिसकी वह अभिलाषा करने लगा था, इसलिए वह मजबूत तथा कठोर कदम उठाने लगा। इसमें साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण भी शामिल था। 1868 के पश्चात मेजी सुधारकों ने आधुनिक जापान को पश्चिमी राष्ट्रों के साथ समानता का दर्जा दिलाने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। वह चाहते थे कि उनके होते हुए जापान का विश्व शक्ति के रूप में सामने आने का सपना भी साकार हो जाए। मेजी पुनः स्थापन के बाद कुछ ही दशकों में जापान ने शक्तिशाली स्थल व नौसेना, कुशल सरकार, देशभक्ति, नागरिकों, विकासशील उद्योगों तथा वाणिज्य की सहायता से अपने आप को विश्व की महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। वह सभी यूरोपीय राष्ट्र जो एशियाई लोगों को बर्बर तथा सभ्य राष्ट्रों के प्रबुद्ध दल से अलग मानते थे, अब जापान को समानता का दर्जा देने लगे। जैसा कि ईओ राय शौअर ने लिखा है, समुराई पृष्ठभूमि वाले जापानी नेताओं ने यूरोपीय साम्राज्यवाद को बहुत उत्साहपूर्वक अपनाया तथा शीघ्र ही उपनिवेश प्राप्त करने के संकल्प में पश्चिमी साम्राज्यवादियों को भी पछाड़ दिया। जापानीज लीडर्स विथ दियर समुराई बैकग्राउंड्स एंथुजेटिकली एम्बैरेस्ड द इम्पेरियलिज्म ऑफ यूरोप एंड सून आउटस्ट्रिपेड द वेस्टर्न इम्पेरियलिस्ट इन दियर डिटर्मिनेशन टू विन कॉलोनीज। उन्होंने महसूस किया कि जापान को प्रमुख विश्व शक्ति बनाने के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधन चाहिए तथा छोटे पड़ोसी देशों पर आधिपत्य स्थापित करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता था। चीन तथा कोरिया के राजनीतिक पतन व सैन्य कमजोरियों ने जापान को यूरोपीय देशों के साथ इन देशों में भूमि तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अग्रसर किया। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जापान को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वह समस्या जापान की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार करते हुए वहां की आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा दे रही थी। ऐसी दशा में जापान के औद्योगिकीकरण में कई समस्याएं पैदा हो रही थी। स्थिरता पाने के लिए जापान अपनी अधिक जनसंख्या को किसी दूसरे प्रदेश में भेजना चाहता था। अमेरिका, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में जापानियों को भेजना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इन राष्ट्रों ने एशियाई नागरिकों के वहां आने पर प्रतिबंध लगा रखे थे। मंचूरिया के प्रतिकूल वातावरण तथा रहन-सहन निम्न स्तर के कारण वहां भी जापानियों को नहीं भेजा जा सकता था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कोरिया सबसे सुविधाजनक स्थान था। कोरिया का अस्थिर व कमजोर प्रशासन भी इसके लिए उपयुक्त था। आधुनिक जापान की औद्योगिकरण ने भी जापान के लिए समस्याएं खड़ी कर दी। उद्योगों के विकास के लिए जापान को कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। कच्चे माल की प्राप्ति के साथ साथ जापान अपना निर्मित सामान भी कोरिया भेज सकता था। कोरिया बदले में जापान को चावल निर्यात कर सकता था। चूंकि जापान की आर्थिक स्थिरता उद्योगों पर निर्भर थी, जापान की केवल 16% भूमि कृषि योग्यता है, इसलिए साम्राज्यवाद को अपनाने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कोरिया की भौगोलिक स्थिति भी काफी हद तक इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। बौद्ध धर्म से व्यापार तक सभी कुछ जापान में कोरिया के रास्ते से होकर ही आया था। चीन और जापान दोनों ही कोरिया पर अपना अधिकार करना चाहते थे, इसलिए कोरिया की राजनीतिक अस्थिरता ने युद्ध की भूमिका तैयार कर दी। 1868 के बाद से ही जापान कोरिया में कठोर नीति अपनाना चाहता था। कुछ समुराय अपने सैनिक कर्तव्य दिखाने के लिए उत्सुक थे। अनेक जापानी कोरिया में यही सब चाहते थे जो पश्चिमी शक्तियों ने जापान में किया था। 1880 के बाद जापानी नवजात सेना, विशेष रूप से यामागाता आरितोमो के नेतृत्व में इस निर्णय पर पहुंची कि जापान की सुरक्षा के लिए कोरिया पर आधिपत्य स्थापित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे उन्हें चीन से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, कोरिया में किसी भी अन्य शक्ति के प्रभाव का बढ़ना जापान के लिए हानिकारक था। वास्तव में जापान के लिए कोरिया की भौगोलिक स्थिति की तुलना उसके दिल की ओर तने हुए छुरे लाइक ए डैगर पॉइंट एट हर ओन हार्ट से की गई। इसलिए जापान किसी भी यूरोपीय शक्ति की प्रभुसत्ता को कोरिया में स्थापित नहीं होने देना चाहता था। जापान सबसे अधिक रूस से असुरक्षित महसूस कर रहा था। इन सब कारणों से जापान स्वयं को कोरिया प्रायद्वीप में मजबूती से स्थापित करना चाहता था। जापान में विपक्षी नेताओं का यह मत था कि कुछ उदारवादी तथा कोरिया के जापान समर्थक लोगों को सहयोग देकर वह जापान में स्वयं के लिए अधिक अधिकार प्राप्त कर सकते थे। इस स्थिति ने भी जापानी सरकार को युद्ध की ओर धकेला। कोरिया का चीन से संबंध 120 वर्षों से भी पुराना था। कोरिया चीन को नजराना भेजता था। वहाँ के राजा का अलंकरण समारोह चीनी सम्राट ही करता था। 16वीं शताब्दी में जापान के आक्रमण तथा चीन के कारण इस व्यवस्था में कुछ रुकावटें आईं। जब जापान अपने कमांडर हिदेयोशी के नेतृत्व में विस्तारवाद पर अग्रसर हो रहा था, तब उसने चीन पर विजय पाने से पूर्व कोरिया पर आधिपत्य करना आवश्यक समझा। कोरिया ने इसका कड़ा विरोध किया, किंतु फिर भी जापान को सफलता मिली। हिदेयोशी की मृत्यु के पश्चात इस प्रकार के प्रयास छोड़ दिए गए। तोकुगावा युग में जापान एक बार फिर बाहरी दुनिया से कटकर रह गया। जब जापान अपने कमांडर हिदेयोशी के नेतृत्व में विस्तारवाद पर अग्रसर हो रहा था, तब उसने चीन पर विजय पाने से पूर्व कोरिया पर आधिपत्य करना आवश्यक समझा। कोरिया ने इसका कड़ा विरोध किया, किंतु फिर भी जापान को सफलता मिली। हिदेयोशी की मृत्यु के पश्चात इस प्रकार के प्रयास छोड़ दिए गए। तोकुगावा युग में जापान एक बार फिर बाहरी दुनिया से कटकर रह गया। अब जापान का चीन से कोरिया के द्वारा संबंध समाप्त सा हो गया। छिंग राजवंश की स्थापना के पश्चात चीन ने फिर से कोरिया पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। केवल कोरिया के फुसान नामक स्थान पर जापान का उपनिवेश था। चीनियों के अतिरिक्त कोई भी विदेशी कोरिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। पश्चिमी राष्ट्रों में वह एकांतवासी राज्य के रूप में जाना जाने लगा। चीन और जापान में पृथकता के अंत के पश्चात पश्चिमी ताकतों ने कोरिया पर दबाव डालना आरंभ कर दिया। वे कोरिया से व्यापारिक, धार्मिक तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहती थी। 1866 में अमेरिका तथा फ्रांस ने एक साथ कोरिया से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जो असफल रहा। 1868 के मेजी पुनः स्थापन के पश्चात जापान ने 3 शिष्टमंडल कोरिया भेजे ताकि पुराने संबंधों को फिर से सुधारा जा सके। लेकिन कोरियाई नाबालिग राजा कोजोंग के पिता ताइवोंगोन ने इनकार कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए 1875 में सैनिक तैयारियों के साथ एक जापानी दल कोरिया भेजा गया। कोरिया में कांधवा का जिला जीत लिया गया। जापान के जबरदस्ती के व्यवहार से विश्व से विवश होकर चीन ने कोरिया को जापान से संधि करने का निर्देश दिया। फरवरी 1876 में कांधवा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार कोरिया एक स्वतंत्र राज्य माना गया, जिसमें चीन की तरह जापान को भी समान अधिकार प्राप्त था। दोनों देशों के बीच दूतावास कायम किए गए। तीसरा, फुशान, इंचोन तथा वोनसान के बंदरगाह उनके लिए खोल दिए गए तथा जापान को उन पर वाणिज्य दूत अधिकार क्षेत्र भी दे दिए गए। इस संधि से कोरिया पर चीन की संपूर्ण प्रभुसत्ता समाप्त हो गई, जिससे कोरिया को लेकर चीन और जापान के संबंध कटु हो गए। इसके अतिरिक्त जापानी व्यापारी तथा मछुआरे कांधवा की संधि के तहत कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त करना चाहते थे। कोरिया की स्वतंत्रता का विरोध न करके चीन ने कोरिया पर अपनी प्रभुसत्ता खो दी। इसलिए जब 1879 में जापान ने रिव्यू द्वीप में वही विस्तारवाद की नीति अपनाई, तो चीन ने कोरिया में जापान के प्रभाव को कम करने के लिए सभी पश्चिमी देशों को कोरिया के साथ व्यापार करने तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करने की अनुमति दे दी। ली हुंग चांग को छिंग सरकार ने कोरियाई मामलों का मुखिया बना दिया। 1882 में अमेरिका कोरिया संधि हुई, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास कायम करने का फैसला किया। इसी संधि के अंतर्गत बंदरगाहों पर व्यापारिक दूतावास कायम किए गए तथा दोनों ने एक दूसरे को समानता का दर्जा देना भी स्वीकार किया। धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी आदि ने भी अलग अलग इसी प्रकार की संधियाँ की। इस तरह ली हुंग चांग की नीतियों के फलस्वरूप कोरिया के साथ पश्चिमी देशों के संबंध भी स्थापित हुए। पृष्ठ संख्या 74। कोजोंग के राजा का पद संभालने के पश्चात 1882 में ताइवोंगेन तथा रानी मिन में संघर्ष शुरू हो गए। रानी मिन सुधार लाना चाहती थी तथा जापानियों का समर्थन करती थी। इस संघर्ष में अनेक जापानी अधिकारियों की जानें चली गई। चीनी सरकार ने अपने अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के लिए भेजा। इसमें ताइवोंगोन को जिम्मेदार पाया गया और उसे बंदी बनाकर चीन भेज दिया गया। चीनी सरकार ने कोरिया को हिदायत दी कि वह जापान में एक क्षमा शिष्टमंडल एपोलॉजी मिशन भेजे तथा उसे हर्जाना दे। यह जापान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी ओर ली की नीतियों के कारण कोरिया में चीन का प्रभाव काफी बढ़ा। चीन और कोरिया ने एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए। एक चीनी अधिकारी को व्यापारिक गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। भविष्य में जापान के आक्रमण रोकने के लिए 6 चीनी सैनिक टुकड़ियों को कोरिया भेजा गया। कोरिया में सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए युएन सरखाए की नियुक्ति की गई। उधर जापान में भेजे गए 6वां शिष्टमंडल को जापान ने सुधारों में मदद लेने का सुझाव दिया तथा 2 जापानी सहायक नियुक्त किए। इसके बदले में टोक्यो ने कोरिया में अपने सेना कम करने का वचन दिया। हर्जाने की कुछ राशि भी कोरिया को लौटाने की बात की गई ताकि उसे सुधारों में प्रयोग किया जा सके। धीरे धीरे कोरिया में जापान समर्थकों तथा चीनी समर्थकों का संघर्ष बढ़ता चला गया। 1884 में जापान समर्थक कोरियाई लोगों ने महल में आग लगा दी और राजा को कैदी बना लिया। चीन के समर्थक अनेक कोरियाई अधिकारी मारे गए। शीघ्र ही सैनिकों ने विद्रोहियों पर काबू पा लिया तथा राजा को छुड़वा लिया। ऐसा रानी मीन द्वारा युवन सरखाए के कहने पर किया गया। इस प्रकार 1884 का विद्रोह असफल रहा। टोक्यो ने कोरिया में एक सैनिक दल भेजा जिसने कोरिया से 5,50,000 डॉलर हर्जाने के रूप में मांगे। जापान ने कोरिया से एक माफीनामा भी मांगा। उधर इतो हिरोबुमी को थिएनचिन भेजा गया। वहां उसने ली के साथ मिलकर अप्रैल 1884 में थिएनचिन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार यह तय किया गया कि 4 माह के भीतर चीन व जापान अपनी सेनाएं कोरिया से हटा लेंगे। दोनों में से कोई भी देश कोरिया के सैनिकों को प्रशिक्षण नहीं देगा, बल्कि किसी तीसरे देश को यह काम सौंपा जाएगा। यह भी तय किया गया कि भविष्य में कोरिया में सेना भेजने से पहले चीन और जापान एक दूसरे को सूचना भेजेंगे व अमन कायम होने पर सेनाएं एकदम वापस बुला लेंगे। इस समझौते से चीन व जापान का कोरिया पर संयुक्त नियंत्रण हो गया तथा चीन की प्रभुसत्ता का प्रश्न ही नहीं रहा। इससे इस बात को भी बढ़ावा मिला कि कोरिया एक स्वतंत्र देश था। इसके बावजूद कोरिया चीन पर ही अधिक निर्भर था। कोरियाई सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए रूसी अधिकारी नियुक्त किए गए। कोरिया की स्वतंत्रता के लिए खतरा समझा। धीरे धीरे इंग्लैंड ने हैमिल्टन बंदरगाह पर अपना अधिकार जमा लिया। पैस्केडोर पर अभी तक फ्रांस का अधिकार था। चीन और जापान दोनों ही कोरिया में पश्चिमी प्रभाव से भयभीत थे। अब जापान ने एक नई नीति अपनाई जिससे चीन को कोरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया गया। जापान की नीति थी कि अगर चीन कोरिया में पश्चिमी प्रभाव को नियंत्रित करेगा तो जापान को केवल चीन से ही निपटना पड़ेगा। ली जापान की नीतियों को ना पहचान सका तथा उसने कोरिया में एक बार फिर चीनी प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। ताए वोंगोन को कोरिया वापस भेज दिया गया। ताइवोंगोन को कोरिया वापस भेज दिया गया। ली हुंगचांग को कोरिया में न्यायिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य संभालने के लिए भेजा गया। 1885 से 1893 तक ली हुंगचांग ने कोरिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में कार्य किया।